शशिव्रता विवाह, कथा वस्तु एवं शिल्प कौशल। पृथ्वीराज रासो में शशिव्रता विवाह प्रसंग 23वें समय अर्थात सर्ग में दिया गया है। इस प्रसंग का कथा वस्तु सार जानने और उसका विवेचन विश्लेषण करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि इस महाकाव्य के अभी तक छोटे बड़े अनेक रूपांतर या संस्करण प्राप्त हो चुके हैं। उनमें मूल काव्य कथानक में चाहे कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, पर मूल काव्य पाठ में जमीन आसमान का अंतर है। पाठ में केवल कुछ शब्द ही परिवर्तित नहीं हुए, बल्कि समूचे पद्य के पद्य ही एकदम अपने रूपाकार में परिवर्तित हो गए हैं। उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत प्रसंगों को ही ले, साहित्य संस्थान उदयपुर से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में भी यह प्रसंग 23वां समय ही है और नागरी पचाणी सभा द्वारा प्रकाशित रासो में भी इसका क्रम 23वां ही है। इसी प्रकार आचार्य हजर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित मूल रूप में भी इसका समय 23वां ही है। यद्यपि संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो संपादक हजर प्रसाद द्विवेदी और नामोर सिंह में 5वां प्रसंग या अध्याय है, फिर भी इन तीनों रूपांतरकारों या संस्करणों की छंद पाठ योजना वस्तु का भाषाई स्वरूप विधान नितांत भिन्न है। इतना भिन्न कि देखकर आश्चर्य होता है और कहने के लिए विवश हो जाना पड़ता है कि ये विभिन्न रूपांतर एवं संस्करण अपने मूल रूप में एक कवि की रचना होकर भिन्न भिन्न कवियों की रचनाएं हैं। सार संक्षेप। शुकशुकी संवाद। हर्षव्रता विवाह प्रसंग का आरंभ कवि ने शुकशुकी संवाद से किया है। अपने नारी सुलभ स्वभाव के अनुरूप शुकी अपने शुक के सामने यह जानने की जिज्ञासा करती है कि अपने पूर्व जन्म में राजकुमारी शशिव्रता क्या और कौन थी, फिर इस जन्म में चौहान नरेश पृथ्वीराज के साथ उसका विवाह कैसे संपन्न हुआ। न चाहते हुए भी शुक इसलिए शशिव्रता के पूर्व जन्म और इस जन्म का सारा वृत्तांत उसे सुनाने लगता है कि कहीं यह माननीय क्रुद्ध न हो जाए। इस मान की बात कहकर ही कवि ने मूल कथा वस्तु में श्रृंगारिकता का संधान कर दिया है। जो हो, शुक ने प्रश्नानुकूल सारा वृत्तांत कहना आरंभ किया। शशिव्रता की सगाई का संदेश जयचंद को भेजना। देवास के राजा भान एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे। उनके भाई पुंज की कन्या शशिव्रता विवाह योग्य हो गई है। यह सोच विचार कर उन्होंने अपने राजपुरोहित को सगाई के प्रतीक रूप में नारियल देकर कन्नौजेश्वर जयचंद के पास भेजा, ताकि उनके भाई कमधज वीरचंद के साथ राजकुमारी शशिव्रता की सगाई और विवाह निश्चित हो सके। राजपुरोहित नारियल लेकर कन्नौज पहुंचा। उसने द्वारपाल के द्वारा अपने आगमन की सूचना राजा जयचंद के पास भिजवाई। जयचंद ने राजपुरोहित को अपने पास तत्काल बुलवा लिया। देवास के राजपुरोहित ने जयचंद के समक्ष उपस्थित होकर सगाई का नारियल अर्पित करते हुए कहा, देवास नरेश, अपने भाई पुंज की पुत्री शशिव्रता का विवाह आपके भाई कमधज वीरचंद के साथ करना चाहते हैं, अतः आप यह नारियल स्वीकार कर इस संबंध को मान्यता दीजिए। विवाह के शुभ लग्न में मात्र 5 ही दिन शेष रह गए। वहां उपस्थित एक गंधर्व कोष्ठक में, जिसे देवेंद्र के द्वारा वस्तुतः अप्सरा चित्र रेखा का अवतार शशिव्रता के देख रेख के लिए नियुक्त किया गया था, कोष्ठक बंद। अपनी योजना के अनुसार दक्षिण दिशा में स्थित देवास में राजकुमारी शशिव्रता से मिलने के लिए चल पड़ा। यहां तक हम प्रस्तुत प्रसंग की मूल कथा वस्तु की भूमिका कह सकते हैं। वास्तविक कथा इसके बाद में आरंभ होती है, जो इस प्रकार है। वह गंधर्व सुनहले रंग का रूप धारण करके अपने राजोद्यान में सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही राजकुमारी शशिव्रता के सामने उपस्थित हुआ। उस स्वर्णिम हंस को शशिव्रता ने चकित मुग्ध भाग से देखा और फिर आगे बढ़कर उसे बलपूर्वक उसे अपने कोमल हाथों में पकड़ लिया। हंस भी जानबूझकर सरलता से उसकी पकड़ में आ गया। तब राजकुमारी शशिव्रता ने राजहंस से उसका परिचय पूछा। उसी पकड़ में अपना परिचय देते हुए उसने कहा कि हंस रूप में वह वस्तुतः देवराज इंद्र के द्वारा नियुक्त एवं प्रेषित गंधर्व है। राजकुमारी की भलाई के लिए ही देवराज इंद्र ने उसे नियुक्त किया है और इस समय यहाँ उसके पास भेजा है। इस पर कौतूहलवश राजकुमार शशिव्रता ने अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा प्रकट की और यह प्रश्न भी किया कि इस जन्म में उसे पति के रूप में कौन सा पुरुष प्राप्त होगा। राजकुमारी शशिव्रता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उस हंस रूपी गंधर्व ने बताया, अपने पिछले जन्म जीवन में वह राजा इंद्र की चित्ररेखा नामक सर्वाधिक सुंदरी रूप गर्विता अप्सरा थी। अपने रूप गर्व के कारण देवराज इंद्र के साथ उसका मतभेद और झगड़ा हो गया। परिणाम स्वरूप देवराज इंद्र ने उसे मृत्युलोक में जन्म लेने का एक मधुर सा शाप दे दिया। मधुर इसलिए कि उसका जन्म राजवंश में होगा और श्रेष्ठतम राजवंश के श्रेष्ठतम वीर सुंदर पुरुष के साथ ही वह ब्याही जाएगी। इसके बाद उस हंस रूपधारी गंधर्व ने राजकुमारी शशिव्रता को भी यही बात बताया कि उसके पिता आदि ने उसका विवाह कन्नौजेश्वर के भाई वीरचंद के साथ निश्चित कर दिया है, जो वस्तुतः उसके योग्य वर नहीं है। यह जिज्ञासा प्रकट करने पर कि उसके योग्य वर कौन हो सकता है, हंस ने चौहान नरेश पृथ्वीराज को बताया और उनके वीरत्वपूर्ण यूरूप यौवन की भी खूब प्रशंसा की। इससे राजकुमार शशिव्रता के मन में पृथ्वीराज के लिए श्रुत्यानुराग उत्पन्न हो गया और उसने हंस रूपी गंधर्व को अपने पिता तुल्य मानकर पृथ्वीराज के पास जाने, उसके मन में भी अपने प्रति प्रेम भाव जगाने का अनुरोध किया। हंस ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वह दिल्ली की ओर चौहान नरेश पृथ्वीराज से मिलने चल दिया। शशिव्रता के पास से चलकर हेम रूप गंधर्व दिल्ली में महाराजा पृथ्वीराज के पास पहुंचा। पृथ्वीराज उस समय एक सुरम्य वन में विहार कर रहे थे। स्वर्णिम हंस को मुग्ध भाव से निहार कर उन्होंने आगे बढ़कर एक प्रकार से बलपूर्वक उसे पकड़ लिया। तब हंस ने उसके सामने देवास की यादव राजकुमारी के रूप यौवन की प्रशंसा करते हुए उसके मन में उत्पन्न श्रुतानुराग के बारे में पृथ्वीराज को बताया। हंसदूत ने शशिव्रता के रूप यौवन और अंग सौष्ठव का वर्णन कुछ इस ढंग से किया है कि सब सुनकर पृथ्वीराज के मन में भी शशिव्रता के प्रति श्रुतिजन्य अनुराग भाव तीव्र गति से हिलोरे लेने का। उन्हें रात भर नींद तक ना आ सकी और सपने में भी वे रूप से शशिव्रता का मान मनोबल करते रहे। अगली सुबह उठते ही महाराज पृथ्वीराज ने हंसदूत से फिर राजकुमार शशिव्रता के बारे में अनवरत प्रश्न करने आरंभ कर दिए। परिणामतः हंस रूपी गंधर्व ने उन्हें बताया कि वह तो चित्ररेखा नामक अप्सरा के अवतार है। अब वह उसके प्रेम भाव से भरकर पति रूप में उसी को प्राप्त करने की अनवरत इच्छा से कठिन व्रत की साधना कर रही है। वह नित्य प्रति गौरी पूजा करके उनसे आपको ही पति रूप में पाने की प्रार्थना करती। आपको न पा सकने की स्थिति में उसने आत्महत्या कर लेने का निश्चय कर लिया है। इससे पृथ्वीराज के मन में प्रेम भाव या श्रुतिजन्य अनुराग भाव और भी अधिक सुदृढ़ हो गया। जब पृथ्वीराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि राजकुमार शशिव्रता के मन में उनके प्रति पूर्वराग या श्रुतिजन्य प्रेम भाव कैसे उत्पन्न हुआ, तो एक कल्पित कथा का सहारा लेकर हंसदूत ने उन्हें बताया कि देवास नरेश महान का एक आनंद चंद नामक मंत्री है। उसकी एकमात्र बहन का विवाह दूर दराज स्थित हिसार प्रदेश में हुआ है। कुछ दिनों तक तो उसकी बहन ने सुखी विवाहित जीवन व्यतीत किया, पर जल्दी ही वह विधवा हो गई। परिणामतः मंत्री आनंदाचंद अपने दुखी एवं विधवा बहन को अपने घर ले आया। वहां आने के कुछ दिन बाद वह राजा भान के अंतपुर में आने जाने लगी। वहीं उसका परिचय शशिव्रता के साथ हुआ और वह उसकी परम सखी बन गई। शशिव्रता के रूप यौवन पर विमुग्ध होकर मंत्री की बहन चंद्रिका उसके योग्य पति के बारे में चिंतित हो उठी। चंद्रिका क्योंकि दिल्ली के पास स्थित हिसार जिले के नीरकाट नामक स्थान पर ब्याही गई थी, अतः महाराज पृथ्वीराज के वीरत्व और युग यौवन वैभव से भली प्रकार परिचित थी। अतः वह नित्य प्रति शशिव्रता के सामने उस सब का बखान करने लगी। शशिव्रता भी उसे एकांत में बुलाकर पृथ्वीराज के बारे में और अधिक बताने का आग्रह करती। परिणामतः सब सुन सुनकर उसके मन में पूर्वराग या श्रुत्यानुराग भाव जागृत हो उठा। उसने आपको ही पति रूप में प्राप्त करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ठान ली है। प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए वह प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करने लगी है। भगवान शिव ने सपने में पार्वती के माध्यम से उसे वरदान दिया है कि वह अपनी कामना के अनुरूप चौहान नरेश को ही पति रूप में प्राप्त करेगी। इस प्रकार हे वीर चौहान नरेश, अब शशिव्रता ने मुझे आपके पास यह निवेदन करने के लिए भेजा है कि आप उसके प्राण की रक्षा करें, उसे वीरचंद के हाथों जाने या प्राण त्याग देने से बचाएं। वीरचंद अपनी सेना सजाकर कन्नौज से देवास की ओर चल पड़ा है। अब सब कुछ आप ही के हाथ में है। यह सब सुन सुनकर पृथ्वीराज का श्रुत्या अनुराग भाव और भी बढ़ गया और फिर शशिव्रता को प्राप्त करने के लिए उद्विग्न हो उठे। तब महाराज पृथ्वीराज ने हंसदूत से पूछा कि देवास में कौन से स्थान पर शशिव्रता उसे मिलेगी और दोनों के मिलाने में मध्यस्थता कौन करेगा। हंस बताता है कि राजकुमारी ने इसके लिए हरसिद्धि नामक स्थान को संकेतित किया है, वहीं वह आपसे मिलने के लिए आवेगी। इस पर पृथ्वीराज ने हंस से कहा कि वह वापस जाकर शशिव्रता को सांकेतिक स्थान पर निश्चित समय पर निश्चित रूप से मिलने के लिए पक्का कर दे। हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को वहां अवश्य पहुंच जाएंगे। सब कुछ निर्धारित हो जाने के बाद वहां से दूत प्रसन्नता एवं उत्साह से भरकर वापस देवगिरी की ओर उड़ गया। यहाँ तक कथावस्तु का पूर्व भाग या पूर्व विधान कह सकते हैं, जिसमें कल्पित कवि युक्तियों कवि संयमों का पालन अधिक हुआ है। इसके बाद संघर्षपूर्ण और वास्तविक कहने योग्य अगला भाग आरंभ होता है। हंसदूत के चले जाने के बाद महाराज पृथ्वीराज ने अपने चुनिंदा सामंतों सरदारों और सैनिकों को विशेष अवसर के लिए रक्षित घोड़ों के साथ एकत्रित किया। यहाँ कवि ने पृथ्वीराज के विशिष्ट सामंतों और उनके लिए निर्धारित विशेष रूप जाति के घोड़ों आदि का बड़ा ही सजीव सटीक वर्णन प्रस्तुत किया है। जो हो, एक विशाल सेना सजाकर पूर्वराग से आकर्षित पृथ्वीराज दक्षिण दिशा में स्थित देवास नगर में अपने रूपसी प्रियतमा से मिलने और उसे पाने के लिए विवाह मुहूर्त विचार कर प्रस्थान कर गए। उधर कन्नौज के कमधज वीरचंद्र ने भी 110,000 के लगभग सेना सजाई और वह भी देवास की ओर चल दिया। वो पृथ्वीराज से पहले ही देवास पहुंच गया। उसके आगमन का समाचार पाकर पृथ्वीराज के प्रति मन ही मन समर्पिता राजकुमार शशिव्रता आत्महत्या के लिए प्रस्तुत हो गई। उसकी आत्महत्या की तैयारी ने माता पिता तथा सभी को विशेष चिंतित कर दिया। अतः बेटी की इच्छा रखने के लिए राजा भान ने भी एक दूत पृथ्वीराज के पास भेज दिया। तभी पृथ्वीराज के विशेषण ने आ पहुंचने का समाचार प्राप्त होता है। परिणामतः राजकुमारी का विषाद जाता रहता है और उसके बंधु बांधव भीषण स्थिति को निकट जानकर संभालने प्रस्तुत होने लगते हैं। राजकुमारी शशिव्रता जब खिन्न मन से आत्महत्या की बात सोच रही थी कि तभी हंसवेशधारी गंधर्व दूत ने आकर राजकुमारी को समाचार दिया कि उसका इच्छित वर पृथ्वीराज गुप्त वेश में हर सिद्धि के पूर्व निर्धारित सांकेतिक स्थान पर देवास में आ पहुंचने के बाद अब पहुंचने ही वाला है। सुनकर राजकुमारी का विषाद जाता रहा और वह प्रिय मिलन को जाने के लिए अपना श्रृंगार प्रसाधन करने लगी। जब राजकुमारी शशिव्रता अपने माता पिता एवं बंधु बांधवों से हर सिद्धि जाने की बार बार आज्ञा मांगती है, तब व्यासन संकट को समझते हुए भी उसे रोक नहीं पाते। स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं भी तैयारी करने लगते हैं। कवि ने इस स्थान पर राजकुमारी शशिव्रता के साज श्रृंगार का भरपूर वर्णन किया है। उसके द्वारा धारण किए जाने वाले वस्त्राभूषणों का वर्णन तो किया ही है, विविध प्रकार के लेपों और सुगंधियों के वर्णन में भी खूब मन रमाया है। इस बहाने उसके नक्षिक सौंदर्य का वर्णन भी अच्छी प्रकार से संपन्न किया गया है। जो हो, अपने को भली भांति सजा संवार कर 30 पालकियों में सखियों को ले साथ लेकर सैनिक रक्षकों से घिर कर वन मार्ग से शशिव्रता ने गौरी पूजन के बहाने हर सिद्धि की ओर प्रस्थान किया। यह जानकर कमधज वीरचंद ने भी अपनी सेना का घेरा उसके चारों ओर लगा दिया। वीरचंद उसकी सेना के घेरे में घबराई शशिव्रता की पाल की हर्षिद्धि के पास जाकर रुकी। शशिव्रता ने उतरकर प्रणाम प्रदक्षिणा किया। तब तक वीरचंद की पुरोहित ने वहां पहुंचकर वीरचंद के आदेश से वंश मंत्रोच्चार आरंभ कर दिया। इससे शशिव्रता के मन और समूचे बाह्यावतरण में एक विशेष प्रकार का तनाव आ गया। शशिव्रता के पिता पुंज भी अपनी सेना सजा लाए। उधर से पृथ्वीराज ने अपने 7,000 बाकी वीरों के साथ सन्यासियों का वेश बनाकर सीधे हरसिद्धि के मध्य भाग में प्रवेश किया। प्रदक्षिणा के मध्य में उसने आगे बढ़कर अपने प्रियतमा शशिव्रता का हाथ पकड़ लिया। संकुचित होती हुई भी शशिव्रता प्रियतम का स्पर्श पाकर खिल उठी। पृथ्वीराज की कपाली और कांवरधारी तीर्थ यात्रियों के वेशधारी सैनिक साथियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यह सब कुछ कुछ ही क्षणों में हो गया। सब देख समक वीरचंद के सैनिक भी सतर्क हो गए और फिर निश्चिंत रूप परिणाम के रूप में घटित होने वाला भयानक द्वंद युद्ध होने लगा। कवि का मन युद्ध वर्णन में भी श्रृंगार वर्णनों के समान खूब रमा है। संयंकार और सूर्यास्त हो जाने पर वीरों का मन युद्ध से रित नहीं होना चाहता था। फिर भी सूर्यास्त हो जाने पर वीरगण अपने शिविरों में विश्राम के लिए लौट गए। यहाँ कभी निषादनी रात था, तत्संबंधी प्रकृति का उन्मुक्त स्वच्छंद वर्णन भी बड़े मनोरम ढंग से किया है। खैर, पृथ्वीराज के रात्रि शिविर की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करने के बाद उसके प्रमुख सामंतों ने सलाह दी कि वे इसी समय शशिव्रता को लेकर दिल्ली चले जाएं। पर पृथ्वीराज के वीरत्व गौरव को यह सब स्वीकार नहीं होता, इसे वह अपने वीरत्व का अपमान और वीर सामंतों के प्रति उत्तरदायित्वहीनता मानते हैं। तभी एक अघटित घटना घटती है, अर्थात रात के समय वर्जित माना जाने वाला युद्ध भी सहसा विपक्षियों के छापे के साथ पुनः आरंभ हो जाता है। दिन से भी बढ़कर इस युद्ध के अंत में भयानक मारकाट होने लगती है। इसे निहार शशिव्रता का मन भय आशंका से कंपित होने लगता है। वह बड़े कातर नयनों से अपने प्रिय की सुरक्षा की भावना से निहारती है। उसकी कातरता का असर समझ कर महाराज पृथ्वीराज तत्काल उसे साथ लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाने का निर्णय लेते हैं। अपने सामंतों को अपना निश्चय बताकर पृथ्वीराज शशिव्रता को लेकर दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। उनके चले जाने के बाद निड्डर दाय नामक चौहान देवास नरेश भान को बताते हैं कि पर्याप्त सेना समाप्त हो चुकी है। जिस बात और कार्य को लेकर युद्ध चल रहा है वह भी अब समाप्त हो चुका है, अर्थात शशिव्रता को लेकर चौहान नरेश पृथ्वीराज सुरक्षित रूप से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अतः अब और युद्ध करना एकदम व्यर्थ है। अगर यह पता चलने पर कि चौहान पृथ्वीराज शशिव्रता को लेकर सुरक्षित निकल गया है, कमधज वीरचंद्र क्रोधावेश से भर उठा और अपने घोड़ों को पृथ्वीराज का पीछा करने के लिए उसने बढ़ा दिया। लगातार आधा कोस भागते जाने के बाद उसने अंततः पास पहुँच कर पृथ्वीराज को एक बार पुनः घेर ही लिया। परिणाम तो दोनों में से ओर से पुनः भयावह युद्ध होने लगा। चौहान पृथ्वीराज सब कुछ भूलकर अपने भयानक युद्ध कौशल का परिचय देने लगा। अंत में उस पर अर्थात वीरचंद्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर अपने प्रियतमा शशिव्रता के साथ महाराज पृथ्वीराज राजधानी दिल्ली आ पहुँचे। उनके स्वागत के लिए दिल्ली के तोरणों से सजाया गया और चारों ओर उत्सव मनाया गया। शशिव्रता के साथ चौहान नरेश पृथ्वीराज ने धूमधाम से नगर में प्रवेश किया। नगर प्रवेश के साथ ही अपने चरम विकास पर पहुंचकर प्रस्तुत प्रसंग समाप्त हो जाता है। इतिहास और कल्पना। जैसा कि आरंभ में कहा जा चुका है, आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के उन्हीं समयों प्रसंगों को प्रामाणिक एवं ऐतिहासिक माना है जिनका आरंभ शुक्सु के संवाद से होता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत प्रसंगों की प्रामाणिकता तो निश्चय ही माना जा सकता है, पर ऐतिहासिकता भी है या नहीं इस बारे में कुछ निश्चित कर पाना सरल नहीं है। प्रायः इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अपनी स्वल्प मात्र 36 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किए थे। उन विवाहों के संबंध में अनेक प्रकार की दंतकथाएं और लोकोपवाद भी प्रचलित हैं। उनमें से संयोगिता विवाह की अनैतिहासिकता स्यात अब तक प्रमाणित हो चुकी है। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी इसे अप्रमाणिक एवं अनैतिहासिक घटना मानते हैं, जबकि इस घटना का वर्णन अनेक इतिहासों पर आधारित नाटकों आदि में हो चुका है। जहां तक देवास की राजकुमारी के साथ पृथ्वीराज के विवाह की घटना का प्रश्न है, अभी तक इसकी ऐतिहासिकता पर किसी ने प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं किया है। फिर जब यह सिद्ध है कि पृथ्वीराज ने अनेक विवाह किए थे तो इस विवाह को प्रमाणिक कहा जा सकता है, अर्थात पृथ्वीराज का विवाह देवास की राजकुमारी के साथ हुआ होगा और उसके लिए विलासिता और प्रतिद्वंदिता के उस युग में पृथ्वीराज को युद्ध संघर्ष भी करना पड़ा होगा। इस बात को ऐतिहासिक घटना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, पर रासो के वर्णन में शशिव्रता के पूर्व जन्म की जो अप्सरा चित्ररेखा के रूप में परिकल्पना की गई है वह निश्चय ही परिकल्पित है और निजंदरी कथाओं पर आधारित है। उस युग में अपने नायक नायिकाओं का उत्कर्ष बताने के लिए अवतार के रूप में परिकल्पना कर लेना एक आम बात थी। ऐसा इस युग के अन्य कवियों को पढ़ने से भी स्पष्ट हो जाता है। भक्तिकाल के प्रेम काव्यों तक यह परंपरा चलती दिखाई देती है और इसे काव्यत्व की दृष्टि से अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने से प्रबंध काव्य के लक्षणों के अनुरूप परा प्राकृतिक तत्वों का समावेश महाकाव्य में स्वतः ही हो जाता है। सो यदि शशिव्रता के पूर्व जन्म की कथा परिकथित है तो इंद्र के शाप, शिव पार्वती के वरदान और गंधर्व के हंस रूप में दूत कार्य करने की बातें विशुद्ध कल्पनाएं ही कही जाएंगी। हर सिद्धि नामक देवालय यदि कल्पित भी है तो भी उसे यथार्थ कहा जा सकता है, क्योंकि उस युग में प्रेमी जन इसी प्रकार के स्तरों पर मिला करते थे। ऐसे स्थलों पर ब्याज में प्रेमियों के मिलन की बातें आज भी एक तथ्य है। कन्याओं का उस युग में यूं ही अपहरण कर लिया जाता था। फिर प्रेमिका के अपहरण की बात तो न केवल भारत बल्कि विश्व जीवन, विशेषकर सामंतकालीन जीवन और साहित्य की एक आम घटना है। अपहरण के समय होने वाले युद्धों की बात भी ऐतिहासिक आम घटना ही कही जाएगी। इसी प्रकार देवास नरेश के मंत्री आनंद चंद्र की बहिना चंद्रिका द्वारा शशिव्रता के मन में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम भाव जगाना भी अविश्वसनीय घटना नहीं कही जा सकती, क्योंकि सामंती सभ्यता संस्कृति में ऐसा ही हुआ करता था। गंधर्व की हंस के रूप में परिकल्पना निश्चय ही संस्कृत के नैषत चरितम जैसे काव्यों की देन कहा जा सकता है। पक्षियों के दूत के रूप में कल्पना करना साहित्य की एक प्राचीनतम परंपरा रही, जिसे मूलतः लोक कथाओं और अधोलिखित साहित्य की देन कहा जा सकता है। और यह परंपरा हमें भक्तिकालीन साहित्य तक अविच्छिन्न रूप से चलती हुई दिखाई देती है। इतिहास और कल्पना से संबंधित इन मुख्य बातों के अतिरिक्त काव्य में जो उभय पक्षीय वीर सामंतवादी के नाम आए हैं, उनके जो वीरत्वपूर्ण क्रियाकलाप दिखाए एवं वर्णित किए गए हैं, वे सब पूर्णतया इतिहास सम्मत ही कहे जाएंगे। वस्तु का गठन और विकास। अपने मूल स्वरूप में पृथ्वीराज रासो चौहान नरेश पृथ्वीराज के वृत्तपूर्ण कार्यों और जीवन वृत्त पर आधारित काव्य ही है। समग्र रूप में उसकी वस्तु योजना अत्यंत सुगठित एवं सुनियोजित स्वीकार की जाती है। उसका विकास भी क्रमशः दिखाया और वर्णित किया गया है। जहाँ तक आलोच्य शशिव्रता विवाह प्रसंग की वस्तु संघटना का प्रश्न है, उसे भी हम इतिहास और कल्पना के सम्मिश्रण से पूर्ण संगठित एवं सुनियोजित कहेंगे। मूल प्रसंग के उठान से पहले कवि ने देवास नरेश द्वारा कन्नौजेश्वर जयचंद्र के पास उनके भाई के साथ शशिव्रता के सगाई के लिए नारियल भिजवाकर भावी योजना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत कर दी है। इसके बाद हंसदूत की परिकल्पना करके दोनों पक्षों अर्थात शशिव्रता और पृथ्वीराज के मन में परस्पर प्रेम भाव बड़ी तीव्रता से जगा दिया है। इस प्रकार त्रिकोणीय संघर्ष के लिए वातावरण पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। देवास में वीरचंद का पहले पहुंचना और शशिव्रता का विष पान कर आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत हो जाना भाविक प्रति उत्सुकता को चरम रूप में जगा देता है। इस प्रकार की अंतर योजनाएं निश्चय बड़ी सूक्ष्म पर सजीव बन पड़ी है। फिर सहसा हंस के दूत द्वारा शशिव्रता को पृथ्वीराज के संकेतित स्थान पर आगमन का समाचार वस्तु की सूक्ष्म संघटना को भी उद्दीप्त ही कर देता है। वातावरण में भी एक प्रकार का तनाव भरकर भावी घटना की पूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर देता है। वीरचंद्र की सेनाओं का शशिव्रता के आसपास घिर आना और फिर पुरोहित का वंश मत शास्त्रोच्चार करने लगना होने वाले विस्फोट के विस्फटिक को चिनगारी दिखाने के समान है। फिर जब सिद्ध वेश में अपने कांवरी वाहक कपाली सामंतों के साथ हर सिद्ध के मध्य भाग में प्रवेश कर पृथ्वीराज शशिव्रता का हाथ पकड़ लेता है, तो समझना चाहिए कि विस्फोटक को समग्र विस्फोट के लिए चिनगारी छुआ दी जाती है। इसके बाद होता है भयानक युद्ध के रूप में पूर्ण विस्फोट और अंत में पृथ्वीराज की विजय। उस विजय को जुटलाने का एक अन्य प्रयत्न रात में होता है और विपक्ष को सफलता नहीं मिल पाती। पृथ्वीराज शशिव्रता को लेकर उत्सव मना रहे राजधानी में प्रवेश कर विस्फोट को भी उत्सव में बदल डालते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शशिव्रता विवाह प्रसंग की वस्तु योजना अत्यधिक सजीव एवं सार्थक है। प्रत्येक छोटा बड़ा उपक्रम मूल कथ्य कथानक से सूक्ष्म अंत स्थूल है। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी वस्तु की योजना और विकास युगीन परिवेश एवं आयामों में पूर्ण संगत कहे जा सकते हैं। समूचे वस्तु विधान का केंद्र राजकुमार शशिव्रता है। उसकी रक्षा, उसे पाने और उसे ले जाने के लिए ही सभी प्रकार के अंतवाद्य बाह्य संघर्ष की योजना की गई है। अतः इस सर्ग का नामकरण भी पूर्णतया तर्क संगत एवं कथ्यानुरूप है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इतिहास और कल्पना के समन्वय से विनिर्मित प्रस्तुत संघ की कथावस्तु अपने आप में पूर्ण और समग्र है।